ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
हरे कृष्ण। तो आज हम पढ़ रहे श्रीमद् भागवतम अष्टम स्कंद अध्याय 6, देवताओं तथा असुरों द्वारा संधि की घोषणा, श्लोक क्रमांक 25। तो इससे पहले हम 21 से लेकर हम अनुवाद पढ़ेंगे और फिर इस श्लोक का उच्चारण करेंगे। 21, तुरंत ही, तो भगवान बता रहे हैं, तुरंत ही अमृत उत्पन्न करने का प्रयत्न करो, जिसे पीकर मरणासन्न व्यक्ति भी अमर हो जाए। बस हे देवताओं, क्षीर सागर में सभी प्रकार की वनस्पतियां, तृण, लताएं तथा औषधियां डाल दो, तब मेरी सहायता से मंदर पर्वत को मथानी तथा वासुकी को मथने की रस्सी बनाकर अविचल चित्त से क्षीर सागर का मंथन करो। इस तरह से दैत्यगण श्रम कार्य में लग जाएंगे, किंतु तुम देवताओं को वास्तविक फल समुद्र से उत्पन्न अमृत प्राप्त होगा। छोटा सा तात्पर्य यहां पर, ऐसा प्रतीत होता है कि जब दूध में सभी प्रकार की औषधियां, लताएं, तृण तथा वनस्पतियां डालकर दूध को मथा जाता है, जिस तरह मक्खन निकालने के लिए दूध को मथा जाता है, तो वनस्पतियों तथा औषधियों के सक्रिय तत्व दूध से मिल जाते हैं और उसके परिणाम स्वरूप अमृत मिलता है। 24, हे देवताओं, धैर्य तथा शांति से हर कार्य संपन्न किया जा सकता है, किंतु यदि क्रोध से विक्षुब्ध रहे तो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाती। अतएव असुरगण जो भी मांगे उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लो। आज 25, न बेद्व्यं कालकूटात् विषाद् जलदि संभवात् लोभ कार्यो न वोजातु रोष कामस्तु वस्तुषु न नहीं बेतव्यम डरना चाहिए कल कालकूटात कालकूट से विषाद विष से जलधि क्षीर सागर से संभवात प्रकट हुए लोभ लालच कार्य कार्य न नहीं वह तुमको जातु किसी समय रोष क्रोध काम विषय वासना तू तथा वस्तुषु वस्तुओं में। अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा, क्षीर सागर से कालकूट नामक विष उत्पन्न होगा, किंतु तुम्हें उससे डरना नहीं है, और जब समुद्र के मंथन से विविध उत्पाद प्राप्त हो तो तुम्हें उनको प्राप्त करने के लिए न तो लालच करना होगा, न ही उत्सुक होना होगा और न ही क्रुद्ध होना होगा। तात्पर्य, ऐसा लगता है कि क्षीर सागर के मंथन से अनेक वस्तुएं उत्पन्न होंगे, जिनमें विष, बहुमूल्य रत्न, अमृत तथा अनेक सुंदरियां सम्मिलित हैं। किंतु देवताओं को सलाह दी गई थी कि वे रत्नों या सुंदरियों के प्रति लोभ न दिखाएं, अपितु धैर्य पूर्वक अमृत की प्रतीक्षा करें। वास्तविक उद्देश्य अमृत प्राप्त करना था। ओम ज्ञान तिमिरंदस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरो श्रीयुता पदकमलं श्री गुरुं वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। तो यहाँ पर भगवान देवताओं को बहुत ही महत्वपूर्ण उपदेश दे रहे हैं, जिससे वो अपना लक्ष्य अमृत पाना उस लक्ष्य को प्राप्त कर सके। 24वां श्लोक के तात्पर्य में श्री विष्णुचार्य ठाकुर एक ही सेंटेंस का तात्पर्य है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण सेंटेंस लिखते हैं। मैं इंग्लिश में पहले बताऊंगा। ओ देवस, द गोल कैनॉट बी अचीव्ड आइदर बाय डिसएग्रीमेंट्स और क्वारल बट बाय कॉम्प्रोमाइज। हम इसी विषय पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो भगवान कह रहे हैं कि जो लक्ष्य है उसको मतभेद या झगड़ा से प्राप्त नहीं हो सकता है, बल्कि समझौता से। थोड़ा कल्पना कीजिए, अगर आप कोई प्लेन में फ्लाइट में आप जा रहे हो और पायलट अनाउंसमेंट करता है, तो अनाउंसमेंट करता है कि नॉर्मली फ्लाइट्स में अनाउंसमेंट्स इंग्लिश में होती है, तो आई एम मिस्टर अग्रवाल फ्रॉम द फ्लाइट डेक, सो वी आर क्रूजिंग एट 10,000 मीटर्स अबाउट सी लेवल एट द स्पीड ऑफ 1,000 kilometers per 700 kilometers per hour, and we will be landing at an unknown destination. अगर आप इस प्रकार का अनाउंसमेंट सुनते हो कि ये जो विमान जो है पता नहीं कहां लैंड होने वाला है, तो अगर आप उस फ्लाइट में अगर आप एक पैसेंजर हो तो कैसा लगेगा आपको? भयभीत हो जाएंगे, सभी लोग भयभीत हो जाएंगे, सोचेंगे लगता है कि किसी ने इस फ्लाइट को हाईजैक किया है, क्योंकि पता नहीं हम कहां जा रहे हैं, कब पहुंचने वाले, कुछ पता नहीं है, सब लोग भयभीत हो जाएंगे। उसी प्रकार हम देखते हैं कि जीवन में हर एक व्यक्ति का किसी ना किसी लक्ष्य जरूर होता ही है, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अगर वो दृढ़ है, डिटर्मिंड है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, फिर वो कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। हम देखते हैं कि जो भौतिकवादी लोग हैं सुबह से लेकर रात तक परिश्रम करते हैं, दिन रात परिश्रम करते हैं, कभी कभी भोजन लेना भी भूल जाते हैं, भक्तों से ज्यादा कभी तपस्या करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया है कि हम धन जरूर कमाएंगे, इंद्रतृप्ति जरूर करेंगे, उनका यह दृढ़ संकल्प है, और इस संकल्प को पूर्ति करने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। तो जब व्यक्ति का लक्ष्य जो है वो निर्धारित है, फिक्स्ड है, तभी व्यक्ति उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से प्रयास करता है। लेकिन अगर लक्ष्य ही फिक्स नहीं है तो फिर किसके लिए प्रयास करेगा व्यक्ति? तो इसलिए सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि लक्ष्य क्या है यह जानना बहुत जरूरी है। यहां पर भगवान देवता वो कह रहे हैं कि अगर लक्ष्य को प्राप्त करना है, और यहां पर लक्ष्य क्या है? अमृत, यह लक्ष्य था। तो भगवान कह रहे हैं अगर इस लक्ष्य को प्राप्त करना है तो तुम्हें क्या क्या करना पड़ेगा, भगवान बता रहे हैं। तो जैसे कि भगवत गीता भगवान बताते हैं, व्यवसायत्मिका बुद्धि, वन पॉइंटेड अटेंशन। जिस प्रकार जब द्रोणाचार्य ने कौरव और पांडवों का परीक्षा ले रहे थे तो उन्होंने वहां पर एक पक्षी रखा था, तो अलग लोग कह रहे थे कि हम ये देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, लेकिन जब अर्जुन का टर्न आया तो अर्जुन ने कहा मैं केवल उस पक्षी का आंख को ही देखता हूं और कुछ भी नहीं। तो इस प्रकार जब हमारा लक्ष्य फिक्स्ड है तो फिर हम उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से प्रयास करेंगे। तो भक्तिमय जीवन में हमारा लक्ष्य क्या है, तो हम भी कुछ अमृत पाने का कोशिश कर रहे हैं। क्या है वो अमृत? विष्णु मंत्र रोज सुबह पढ़ते हैं, क्या है वो सेंटेंस? शीघ्र अति शीघ्र क्या प्राप्त करना है? कृष्ण प्रेम, रोज हम पढ़ते हैं शीघ्र अति शीघ्र। इस कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना यह हमारा लक्ष्य है, वो अमृत है, वो हमारा लक्ष्य है। यहां पर विश्वनाथ ठाकुर कह रहे हैं कि अगर उस लक्ष्य को प्राप्त करना है तो मतभेद, झगड़ा, इसके द्वारा हम उस लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समझौता या सहयोग की आवश्यकता है। यहां पर हम देख सकते हैं कि जो भगवान देवतागणों को यह उपदेश दे रहे हैं और कह रहे कि जो असुरगण है उनसे समझौता करो। अब सोचिए जरा, असुर जो हैं उनके नित्य शत्रु हैं और भगवान कह रहे ऐसे लोगों के साथ मिलजुल कर काम करो। आप थोड़ा अपने आप को उस परिस्थिति में डालकर आप थोड़ा कल्पना कर सकते हैं, सोच सकते हैं। अगर आपको इस प्रकार बताया जाए कि ये व्यक्ति जो है, ये भक्त जो है, जिनसे तुम्हारा बिल्कुल मिलता जुलता नहीं है, ऐसे भक्त के साथ सेवा करो। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अगर आपको ऐसा आदेश दिया जाता है तो कैसा लगेगा आपको? तो कभी कभी भक्त लोग भी कहते हैं कि हमें इनसे इनके साथ जमता नहीं है, हमारा कुछ केमिस्ट्री मिसमैच है। लेकिन यहां पर देखिए कितना केमिस्ट्री मिसमैच है, असुर और देवतागण, इन दोनों में सिमिलैरिटीज क्या है? ठीक है, एक सिमिलैरिटी है, दोनों के पिता एक ही है, उसके अलावा क्या सिमिलैरिटी है? दोनों जीव हैं, दोनों का लक्ष्य जो है बिल्कुल विपरीत है। साधारणतया देवतागण भगवान को मानते हैं, असुरगण भगवान को बिल्कुल मानते नहीं है, भगवान तो उनका दुश्मन है। और यहां पर भगवान कह रहे तुम दोनों साथ साथ होकर मिलजुल कर ये कार्य करो। तो देखिए देवता लोगों के लिए कितना बड़ा परीक्षा है ये। जय श्री राम। तो भगवान इन देवता लोगों को ऐसी परीक्षा में डाल रहे हैं जो वास्तव में बहुत ही मुश्किल है। ऐसे व्यक्तियों के साथ जिनका कुछ मिलता जुलता नहीं है, जो शत्रु हैं, ऐसे शत्रुओं के साथ काम करना एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील प्रभुपाद लाला बाबू के बारे में बताते हैं। सुना लाला बाबू? तो लाला बाबू एक बंगाली के जमींदार थे और भगवान से प्रेरित होकर वो अपना बिजनेस वगैरह सब कुछ छोड़कर वृंदावन जाता है और वृंदावन में एक गुरु का शरण लेने का प्रयास कर रहे थे। तो गुरु ने कहा कि यहां पर जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों से भिक्षा मांग, और उनमें से एक व्यक्ति उनका बिजनेस डेज में कॉम्पिटिटर था, तो उनका शत्रु था वो कॉम्पिटिटर। तो गुरु कहता है कि सभी लोगों से, शत्रु हो या मित्र हो, सभी से जाकर भिक्षा मांगो। तो लाला बाबू सोचता है ये बहुत मुश्किल है, ये कैसे संभव होगा? लेकिन गुरु कहते हैं कि जब तक सभी लोगों के पास नहीं जाते हो तब तक मैं शरण नहीं दूंगा। तो ये लाला बाबू जो है बहुत कठिनाई के साथ अपने मिथ्या अहंकार को बाजू में रखते हुए वो शत्रु के पास जाता है। और शत्रु जो है वो उनका कॉम्पिटिटर, वो तो आश्चर्यचकित हो जाता है, अरे तुम तो यहां पर मेरे घर में, ये क्या हुआ? तो लाला बाबू कहता है कि कृपा करके माफ कीजिए, जो भी हुआ है माफ कीजिए, थोड़ा भिक्षा दीजिए। तो जब गुरु देखते हैं कि इस व्यक्ति ने अपना मिथ्या अहंकार को बाजू में रखकर मित्रों और शत्रुओं को न देखकर जब वो सभी के पास जाकर भिक्षा मांगता है, तभी गुरु प्रसन्न होकर आश्रय देते हैं। तो इस प्रकार ये जो यहां पर कृष्णाचल ठाकुर कह रहे हैं कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए झगड़ा या मतभेद इससे नहीं होगा, किससे होगा? समझौता या सहयोग से। तो श्री प्रभुपाद अपने अनेक तात्पर्यों में ये बताते हैं कि किस प्रकार, क्योंकि हम सब अलग अलग जीव हैं, तो इसलिए सभी लोगों को एक समान सोचना या कार्य करना यह संभव नहीं है। सभी लोग अलग अलग हैं, सभी व्यक्ति हैं, इंडिविजुअल्स हैं, तो क्योंकि सब अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं तो सबका सोचने का ढंग, कार्य करने का ढंग, सब कुछ अलग अलग होता है। तो भक्तों के समाज में भी मतभेद होना ये स्वाभाविक है। वास्तव में इससे ये प्रूफ है कि हमारा पर्सनलिस्टिक फिलॉसफी है, हर एक व्यक्ति एक पर्सन है, अलग है, हम सब एक नहीं है। तो क्योंकि सब अलग अलग व्यक्ति हैं, अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं, तो अलग अलग मत हैं, अलग अलग सोचने का तरीका है, लेकिन फिर भी साथ में रहकर सहयोग करना एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। लेकिन मुख्य बात यह रह जाता है कि क्या हमारा सबका लक्ष्य एक है या नहीं। तो अगर हम सभी वैष्णव कहलाते हैं तो हम सभी का लक्ष्य एक होना चाहिए, वो है भगवत प्रेम या भगवान को प्राप्त करना, ये सभी का लक्ष्य होना चाहिए। तो अगर लक्ष्य एक है, तो प्रभा जी लिखते हैं अगर लक्ष्य एक है तो वास्तव में मतभेद नहीं हो सकता है। क्योंकि लक्ष्य एक है, तो आप ये प्रचित इस चौथे स्कंद में इस तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी एकदम कॉन्ट्रेडिक्टरी चीज लिखते हैं। एक वाक्य लिखते हैं कि देर कैन बी म्यूचुअल डिसएग्रीमेंट्स अमंग्स वैष्णवस, फिर इमीजिएटली अगला सेंटेंस लिखते हैं देर कैन बी नो डिसएग्रीमेंट्स अमंग्स वैष्णवस बिकॉज द गोल इज वन। क्योंकि लक्ष्य एक है तो वास्तव में मतभेद नहीं हो सकता है। इसका यह मतलब हुआ कि हालांकि मतभेद है लेकिन फिर भी उन मतभेदों को बाजू में रखते हुए उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एकत्र होकर कार्य करने के लिए हम तैयार हो जाते हैं, जिस प्रकार ये देवतागण और असुरों ने किया। तो हम देखते हैं कि जब श्रील प्रभुपाद जी इस धरती पर थे तभी भी हम देखते हैं कि किस प्रकार अलग अलग भक्तों के बीच में मतभेद और इस प्रकार झगड़े इत्यादि होते थे, ये तो नित्य काल से चल रहा है। तो प्रभुपाद जी अक्सर भक्तों को साथ में लाकर समझौता करने का प्रयास करते थे। हम देखते हैं कि एक उदाहरण के लिए जब सिद्ध स्वरूपानंद एक अलग सा ग्रुप बनाता है, क्योंकि उनका इस्कॉन के अन्य भक्तों से नहीं चल रहा था उनका, तो उन्होंने अपना खुद का सेंटर बनाया और कुछ थोड़ा अलग तरीके से चल रहा था उनका। तो प्रभुपाद जी उनको बार बार बुलाकर उनको समझाने का प्रयास किए, कृपया करके सहयोग कीजिए बाकी भक्तों के साथ। और फिर प्रभुपाद जी उनको कहते हैं कि यहां पर एक नया मंदिर बनाना है, तो तुम सभी भक्त लोग मिलकर यह मंदिर बनाइए। तो ये एक उदाहरण है, ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां पर श्री प्रभुपाद जी बार बार भक्तों को एकत्र होकर सहयोग के साथ इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित करते थे। ये बहुत आसान है कि हम कहें कि मुझे तो जानता नहीं है, मैं अलग हो जाऊंगा, ये तो आसान है ये करना। लेकिन अगर हमारा लक्ष्य है श्री प्रभुपाद जी को प्रसन्न करना, अगर हमारा लक्ष्य है भगवत प्रेम को प्राप्त करना, अगर हमारा लक्ष्य है भगवान को प्रसन्न करना, तो क्या यह कार्य उनको प्रसन्न करेगा या नहीं, यह महत्वपूर्ण बात है। तो श्री प्रभुपाद जी हम जानते हैं कहते हैं कि इफ यू वॉन्ट टू प्लीज मी प्लीज कोऑपरेट टू कीप दिस मिशन गोइंग। तो श्री प्रभुपाद जी चाहते हैं कि हम अपने मतभेदों को बाजू में रखकर, इसका मतलब यह हुआ कि हमारा जो मिथ्या अहंकार है उसको बाजू में रखकर सहयोग करें। तो डिफरेंसेस को देखना, विविधताओं को देखना बहुत आसान है, अरे व्यक्ति अलग है, तो कोई व्यक्ति कह सकता है कि यह भक्त जो है वो किस तरह चलता है बोलता है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये उस देश से है, यहां से है, वहां से है, वो किस तरह हरे कृष्ण मंत्र जप करता है, तो डिफरेंसेस तो अनेक हैं, इसका कोई लिमिट ही नहीं है डिफरेंसेस का। लेकिन एक चीज कॉमन है, वो क्या है, लक्ष्य एक है। तो अगर हम डिफरेंसेस की बात करेंगे तो यहां पर असुर और देवतागण में कितने सारे डिफरेंसेस है, लेकिन फिर भी साथ में आकर कार्य करने के लिए भगवान यहां पर उनको आदेश दे रहे, उपदेश दे रहे हैं। तो यह महत्वपूर्ण चीज यह है कि अगर हमें लक्ष्य को प्राप्त करना है तो यह कोऑपरेशन, सहयोग की भावना जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम डिफरेंसेस पर हाईलाइट करेंगे, डिफरेंसेस पर फोकस लाइट डालेंगे, तो फिर तो अनंत डिफरेंसेस दिखेंगे, हजारों हजारों डिफरेंसेस दिखेंगे। और फिर झगड़ा करने के लिए हजारों कारण मिलेंगे, और कलयुग में तो बहुत आसान है। लेकिन अगर हम लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो उनको बाजू में रखकर उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना यह जरूरी है। तो यहां पर भगवान कह रहे हैं, हे देवताओं, धैर्य तथा शांति से हर कार्य संपन्न किया जा सकता है, किंतु यदि कोई क्रोध से विषिप्त रहे तो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाती। अतः असुरगण जो भी मांगे उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लो। देखो इतना 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 ही नहीं कि साथ में कार्य करना है, भगवान कह रहे कि जो भी उनकी प्रस्तावना है स्वीकार कर लो, बस चुपचाप स्वीकार करना है। देखिए कितना मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि देवतागण और असुरगण साथ आगे उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। लेकिन यह सहयोग की भावना में बाधाएं क्या हैं? हम क्यों सहयोग नहीं कर पाते हैं, इसमें बाधाएं क्या हैं, वो अगले श्लोक में भगवान बता रहे हैं। तो अगले श्लोक में भगवान बताते हैं कि शीत सागर से जैसे ही यह मंथन शुरू होने वाला है तो सबसे पहला चीज क्या निकलने वाला है, कालकूट विष। और उसके बाद यहां पर भी विष्णुचरण ठाकुर लिखते हैं तो भगवान कहते हैं उनको कि तीन चीजों से सावधान रहना है। तो यहां पर भी ये तीन शब्द आया है, लोभ रोष काम। तो भगवान कहते हैं कि देखिए मंथन के समय बहुत सारे सुंदर हीरे रत्न निकलने वाले हैं, लेकिन उनके लिए लोभी मत बनो। और ये रत्न जो है ये कौन लेने वाला है, ये असुरगण लेने वाले हैं। लेकिन जब असुरगण लेंगे तब क्रोधी मत हो जाना, और जब बहुत सुंदर स्त्रियां निकलेगी यहां से इस मंथन से तभी कामुक मत हो जाना। तो कहने का मतलब यह है कि अगर ये तीन चीज जो है काम क्रोध लोभ, ये तीन चीज वास्तव में ये बाधाएं हैं इस समझौता के साथ और सहयोग के साथ कार्य करने में। बाधाएं क्या हैं, काम क्रोध लोभ। इसलिए भगवान कह रहे हैं इनसे सावधान रहो। तो वास्तव में जब हम भक्ति करने का प्रयास करते हैं वास्तव में यही हो रहा है, हमारे हृदय का मंथन हो रहा है, जर्निंग ऑफ द हार्ट। और जब मंथन होता है तो जिस प्रकार यहां पर सबसे पहला चीज क्या निकलता है, कालकूट विष, जो हमारे अनर्थ के समान है। तो प्रभा जी यहां पर पिछले श्लोक में उदाहरण दे, जिस प्रकार जब हम मक्खन से घी बनाते हैं तो अनुभव होगा तो उसके ऊपर क्या आ जाता है, वो सब जितने भी इंप्यूरिटीज हैं वो सब ऊपर आ जाते हैं, फोम और इत्यादि जो भी इंप्यूरिटीज हैं वो सब ऊपर आ जाते हैं। प्रभुपाद जी दूसरा उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार जब हम एक गंदा कमरा को साफ करते हैं तो क्या होता है, सब मिट्टी जो है ऊपर उठता है। तो तभी वास्तव में हमें पता चलता है कि ये रूम जो है वो गंदा था। उसी प्रकार जब हम भक्ति शुरू करते हैं, जब ये हृदय का मंथन शुरू होता है तभी वास्तव में हमें समझ में आता है कि वास्तव में कुछ अनर्थ है। अगर हम किसी भौतिकवादी व्यक्ति को कहेंगे अरे तुम्हें कितना काम क्रोध लोग ये सब है, व्यक्ति कहेगा नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, क्या प्रॉब्लम है। तो जब शुद्धिकरण का प्रोसेस शुरू होता है तभी वास्तव में व्यक्ति समझ लेता है, तभी जब चेतो दर्पण मार्जनम शुरू होता है तो भगवान दर्पण को सामने रखते हैं, देखो क्या है अंदर, क्या है देखो। तो इसलिए जब हम भक्ति शुरू करते हैं तभी वास्तव में हमें समझ में आता है कि काम क्रोध जैसे कुछ चीज है, नहीं तो भौतिकवादी लोग सोचते हैं कि सब कुछ ठीक है, जस्ट डू इट, जो मन में आता है वही करो, वही सत्य है, वही ठीक है। लेकिन जब हम भक्ति शुरू करते हैं तभी वास्तव में हमें समझ में आता है कि ये सब अनर्थ है और वो सब ऊपर आने लगते हैं। तो हम ये जो यहां पर यह लीला को जो विश्वाचार्य ठाकुर अपनी माधुरी कादंबरी में भक्ति की स्टेजेस से हम कंपेयर करेंगे, जो यहां पर ये प्रोसेस जो है और जो भक्ति का प्रोसेस जो है, इन दोनों चीजों को हम कंपेयर करके हम थोड़ा एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहला है श्रद्धा। तो श्रद्धा के साथ जब व्यक्ति भक्ति शुरू करता है तभी वो जो शुद्धिकरण का प्रोसेस है वो शुरू होता है। तो यहां पर देखिए, ये देवता लोगों को पूरी तरह से श्रद्धा थी भगवान के शब्दों में। अभी वो सोच सकते थे कि देखो हम तो बहुत कमजोर हैं, अगर ये अमृत आ जाता है, लेकिन क्योंकि ये असुरगण बहुत बलशाली है, वो अमृत छीन कर चले लेकर जाएंगे, तो हमें तो अमृत नहीं मिलने वाला है। लेकिन यहां पर उनको पूरी तरह से श्रद्धा और विश्वास भगवान के बातों पर, क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि यह अमृत जो है मैं तुम्हें देने वाला हूं। तो सबसे पहला है श्रद्धा, और श्रद्धा के साथ जब हम भक्ति शुरू करते हैं भक्तों के बीच में, तब हम भक्तों के संग में आते हैं, साधु संग, और फिर भक्ति का प्रोसेस हम शुरू करते हैं, भजन क्रिया। तो जब हम भजन क्रिया शुरू करते हैं, तो जब हम नए भक्त लोग आते हैं भक्ति के प्रोसेस में, तो सबसे पहले उनको लगता है कि सब कुछ एकदम फर्स्ट क्लास है, यहां पर सभी शुद्ध भक्त हैं, मैं भी शुद्ध भक्त हूं, ये फर्स्ट क्लास प्रोसेस है। और थोड़े ही दिनों में भगवत धाम बहुत पास में ही है, तो इसने शुरुआत के दिनों में भक्तन बहुत उत्साहित होते हैं, सबका अनुभव होगा। तो शुरुआत के दिनों में कितने उत्साह के साथ जप करते हैं, कीर्तन में भाग लेते हैं, क्लास को भी बहुत अटेंटिवली सुनते हैं, सब कुछ एकदम फर्स्ट क्लास होता है, सभी उनको लगता है सभी भक्त जो है फर्स्ट क्लास शुद्ध भक्त हैं। तो इसलिए बहुत उत्साह के साथ, देयर इज अ चाइल्डिश इनोसेंस, तो इसलिए बहुत उत्साह के साथ सभी कार्य करते हैं, उसको कहते हैं उत्साहमयी। लगता है उत्साह है लेकिन वो केवल स्पोरैडिक एंथुसियाज्म, इनिशियल एंथुसियाज्म है, किसी भी कार्य की शुरुआत में बहुत उत्साह होता है। जैसे कहते कि नैना मुल्ला जोर से चिल्लाता है, सुना है? जो मस्जिद में जब मुल्ला नया होता है तो जोर जोर से चिल्लाता है। कहने का मतलब यह है कि जब शुरुआत के दिनों में बहुत सारा उत्साह होता है, लेकिन जब ये शुद्धिकरण का प्रोसेस हम जारी रखते हैं, तो फिर जब अनर्थ सामने आने लगते हैं तो फिर समझ में आता है कि अरे मैंने सोचा था कि भगवत धाम बहुत ही पास में है, लेकिन अभी तो लगता है कि इट इज लाइट ईयर्स अवे, बहुत ही दूर लगता है। तभी जो नेक्स्ट स्टेज है वो है घनतरद। तो कभी कभी घनतरद, तो कभी कभी इसलिए बहुत उत्साहित होता है, लेकिन जब अनर्थ सामने आते हैं और भक्त को लगता है अरे ये तो बहुत मुश्किल है, तो फिर उत्साह कम हो जाता है। यह है घनतर। लेकिन भगवान यहां पर कह रहे हैं कि कुछ भी होने दो, उत्साह से कार्य करो। लेकिन जो इन अनर्थों की वजह से बहुत सारे डाउट्स आने लगते हैं, तो वो है व्यूढ़ विकल्प। तो फिर भक्त सोचने लगता है, अरे इतने सारे अनर्थ हैं, ये तो माउंट सुमेरु पर्वत के समान लग रहा है, इसको लांघ कर जाना तो लगता है संभव नहीं है। फिर भक्त सोचता है, नहीं नहीं हो सकता है, मैं सब कुछ इंद्रतृप्ति जो है सब कुछ त्याग कर दूंगा और मैं दृढ़ता के साथ भक्ति करूंगा, ब्रह्मचारी बनूंगा, सन्यासी बनूंगा और मैं भगवतम जग जाऊंगा। थोड़े दिनों के बाद फिर से अनर्थ सामने आते हैं। ओ लगता है प्रोसेस काम करेगा या नहीं, तो एक डाउट्स आने लगते हैं। यह है व्यूढ़ विकल्प। लेकिन फिर भी अगर लक्ष्य भक्त सामने रखता है, फिर वो संघर्ष को जारी रखता है। अगर वो लक्ष्य को भूल जाता है तो फिर उसको लगेगा ये बहुत मुश्किल है, छोड़ देंगे, ये संभव नहीं है, ये भक्ति ये सब संभव नहीं है, अच्छा है मैं इंद्रतृप्ति करूंगा वही अच्छा है। लेकिन अगर लक्ष्य को सामने रखते हुए भक्त जो अपना संघर्ष है उसको जारी रखता है, फिर उसको कहा है विषय संग्रह। तो हालांकि विषयों या इंद्रतृप्ति से वो संघर्ष चल रहा है, तो कभी वो संघर्ष में जीत जाता है, कभी हार जाता है, तो ये संघर्ष चलता रहता है। लेकिन फिर भी क्योंकि लक्ष्य सामने है तो वो संघर्ष को जारी रखता है और अपने भक्ति में और प्रगति करने के लिए कुछ व्रत लेता है, सोचता है कि कल से हर रोज 2 बजे उठूंगा, मंगल आरती से पहले जप करूंगा, कोई स्वीट्स नहीं, इत्यादि बहुत सारे व्रत रखता है। लेकिन फिर भी क्योंकि दृढ़ता जो है, दृढ़ संकल्प इतना स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि मन बहुत बलशाली है, तो उन व्रतों को वो नहीं रख पाता है कभी कभी। वो है नियम अक्षमा। और ठीक है, अगर इस प्रकार संघर्ष करते करते वो और प्रगति कर लेता है और भक्ति में काफी दृढ़ बन जाता है, अपने इंद्रियों मन और इंद्रियों को संयत करता है, तो फिर माया सोचती है, लगता ही यह व्यक्ति मेरे चंगुल से बाहर जा रहा है, अब एक कुछ और प्लान बनाना पड़ेगा। तो फिर माया जो है, जो सूक्ष्म अनर्थ है, पूजा लाभ प्रतिष्ठा, यह सामने रखती है। तो कहा जाता है कि जब भक्त प्रगति करता है तो क्योंकि भक्ति देवी है उसमें, तो भक्ति देवी बहुत आकर्षित हैं और उस भक्ति देवी के प्रभाव से भक्त को धन प्रतिष्ठा सब कुछ प्राप्त होता है। लेकिन यह माया का टेस्ट है। अगर भक्त उनसे आसक्त हो जाता है तो फिर भक्त को लगता है, अगर यह प्राप्त नहीं होगा तो भक्ति मैं नहीं कर सकता हूं। तो इस प्रकार जो लक्ष्य है, पहले तो केवल लक्ष्य कृष्ण प्रेम ही था, लेकिन अभी जो लक्ष्य है, अगर वो बार बार नियमित रूप से भक्तों की संगति में श्रवण कीर्तन नहीं करता है तो जो लक्ष्य है वो धीरे धीरे कहीं और चला जाता है। इसको कहते हैं तरंग रंगिनी। तो फिर भक्ति के समुद्र पर, भक्ति रसामृत सिंधु इस सागर पर बहुत बड़े बड़े लहरें आ जाते हैं, सुनामी जैसे। और फिर उस भक्त के जीवन में ये बहुत बड़ी बाधाएं बन जाती हैं। लेकिन अगर भक्त इन सारी चीजों को केवल भगवान की सेवा में इस्तेमाल करता है, ये सोचते हैं कि भगवान ये सारी चीज दे रहे हैं उनकी सेवा में इस्तेमाल करने के लिए, उनसे विचलित नहीं होता है, उनसे आसक्त नहीं होता है, तो फिर भक्त परवाह नहीं करता है। फिर भक्त को लगता है ये तो छोटे छोटे लहर है इस सागर पर, विचलित नहीं होता है। लेकिन अगर भक्त आसक्त हो जाता है तो फिर बहुत बड़े प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। फिर भक्त को लगने लगता है कि ये भक्ति करने के लिए ये पूजा लाभ प्रतिष्ठा अगर प्राप्त नहीं होगा तो ये असंभव है, आसक्त हो जाता है। और अगर प्राप्त नहीं होता है तो क्रोधित हो जाता है। जब थोड़ी मात्रा में प्राप्त होता है तो भक्त सोचने लगता है अरे इतना कम और चाहिए, लोभी हो जाता है। क्योंकि ये भौतिक इच्छाओं का ये गुण है, भौतिक इच्छाएं जो हैं, जब व्यक्ति भौतिक इच्छाओं को पूर्ति करने का प्रयास करता है तो इच्छाएं बढ़ती हैं, वो कभी कम नहीं होती है। तो फिर व्यक्ति इन भौतिक चीजों को प्राप्त करने के लिए और लोभी बन जाता है और इस प्रकार काम क्रोध और लोभ में फंस जाता है। और ये तीनों चीज जो हैं, ये भक्ति में आगे बढ़ने के लिए बहुत बड़ी बाधाएं बन जाते हैं, जिसके भगवान भगवद गीता में बताते हैं ये तीन क्या है, नरक के द्वार है, काम क्रोध और लोभ। तो इस प्रकार ये सारे अनिश्चित भजन क्रिया के लक्षण हैं, अनिश्चित भजन क्रिया। लेकिन अगर व्यक्ति अपना लक्ष्य को सामने रखते हुए पूरी तरह से प्रयास करते रहता है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, जब वो प्रयास करता है हरिनाम को ध्यान पूर्वक लेने के लिए, ध्यान पूर्वक भक्तों की संगति में आता है, भक्तों के लिए सेवा करता है, गुरु महाराज के आदेश को पालन करने का प्रयास करता है, तभी इन बाधाओं के बावजूद वो आगे बढ़ता है। तो इसलिए यहां पर भगवान देवताओं को कह रहे हैं इनका इस काम क्रोध और लोभ से प्रभावित न होकर, ये बहुत सारे प्रलोभन आ जाएंगे यहां पर इस समुद्र मंथन में, बहुत सारे प्रलोभन। सबसे पहले तो ये कालकूट विष, फिर ये प्रलोभन, बाधाएं, ये सब आ जाए, लेकिन इनसे विचलित मत हो जाओ। लक्ष्य को सामने रखो और लक्ष्य को सामने रखते हुए सहयोग के साथ, कोऑपरेशन के साथ ये जो समुद्र मंथन को जारी रखो। तो उसी प्रकार ये भक्ति जो है ये समुद्र मंथन के समान है, और यहां पर भी ये विष और प्रलोभन, बाधाएं, ये सब आएंगी। लेकिन मुख्य बात यह है कि लक्ष्य को हमेशा सामने रखना, और इस लक्ष्य को हमेशा सामने रखने के लिए ये श्रवण कीर्तन जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम नित्य रूप से ये श्रवण कीर्तन करते हैं, हम याद दिलाते हैं अपने आप को कि ये लक्ष्य क्या है, इस लक्ष्य को बार बार याद दिलाते हैं। ये लक्ष्य धनम जनम सुंदरी नहीं है, इसको बार बार याद दिलाना पड़ता है, क्योंकि माया के प्रभाव से हमारा लक्ष्य जो है वो कुछ और हो सकता है। और हम देखते हैं कि भरत महाराज भी हालांकि बहुत उन्नत भक्त थे, लेकिन फिर भी माया के प्रभाव से उनका लक्ष्य जो है वो धीरे धीरे कुछ और हो गया। और सोचने लगा कि मैं करता हूं, मैं देखभाल करने वाला हूं इस हिरण को, मेरे सवार और कौन व्यक्ति हैं इसको देखभाल करने के लिए। इस प्रकार ये जो ईश्वर भाव है यह उत्पन्न हुआ, और इस ईश्वर भाव की वजह से यह भी एक काम वासना है, यह ईश्वर भाव सोचना कि मैं संभालने वाला हूं, मैं कंट्रोलर हूं। तो इसलिए भरत महाराज भी विचलित हुए। तो इस प्रकार ये बहुत जरूरी है, महत्वपूर्ण बात यह है कि यहां पर भगवान बता रहे हैं कि इसलिए धैर्य के साथ, धैर्यता की आवश्यकता है, तो उत्साह, निश्चय, धैर्य, तीनों चीज, तो ये सब बाधाएं होते हुए भी उत्साह बनाए रखना और साथ साथ धैर्य, क्योंकि जो अमृत है वो तुरंत आने वाला नहीं है, उसके लिए प्रतीक्षा करना पड़ेगा। तो इसलिए धैर्य की आवश्यकता है, और साथ साथ इन सभी बाधाओं को पार करने के लिए भगवान के प्रति प्रार्थनाएं अर्पित करना। तो इस प्रकार जब हम भक्ति का प्रोसेस को जारी रखते हैं, लक्ष्य को सामने रखते हुए हमेशा, तभी हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो फिर हम अन्य भक्तों के साथ इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग नहीं कर पाएंगे। हम अपने अपने मिथ्य अहंकार के कारण काम, क्रोध, लोभ इसमें फंस जाएंगे, और फिर जो हमारा लक्ष्य है उस वो दूर हो जाएगा और उस लक्ष्य को हम नहीं प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन भक्तों की संगति में जब इस प्रकार यहां पर तो स्वयं भगवान बता रहे हैं, उसी प्रकार जो भगवान के प्रतिनिधि हैं, भक्तों से जब हम बार बार श्रवण करते हैं, हमेशा लक्ष्य को सामने रखते हैं, तो फिर कितने भी सारे डिफरेंसेस क्यों ना हो, फिर भी हम लक्ष्य को सामने रखते हुए हम सहयोग करने का प्रयास करेंगे। जिस प्रकार प्रीतम महाराज ने सहयोग किया इंद्र से, हालांकि वो बहुत ही मुश्किल था, लेकिन फिर भी क्योंकि ब्रह्मा जी जो भगवान के प्रतिनिधि हैं वो हमको उपदेश दे रहे थे, तो प्रीतम महाराज सहयोग करते हैं। तो इस प्रकार जब हम सहयोग करते हैं, गुरु के आदेशों को पालन करते हैं और काम, क्रोध, लोभ से मुक्त होने का पूरी तरह से प्रयास करेंगे, तभी हम जो हमारा अंतिम लक्ष्य है कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना, वो संभव होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। किसको कोई प्रश्न है?
हरे कृष्ण बोले। थैंक यू वेरी मच फॉर वेरी इनलाइटनिंग लर्निंग लेक्चर। हमें वापस बेसिक्स पे फोकस करने के लिए और भक्ति में सचेत रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें प्रभु जी, जो आपने कोऑपरेशन का जो आपने एग्जांपल लिया देवताओं और दानों से, और उससे भक्तों के बीच में कोऑपरेशन के बारे में आपने एक्सप्लेन किया, एनालॉजी दी, तो पर हम देखते हैं यहाँ पे जो देवताओं को कोऑपरेशन था वो एक कोऑपरेशन विद एन अल्टीरियर मोटिव था, वो कोऑपरेशन था, बट अल्टीमेटली वो दानवों को दबा देना चाहते थे। सो उस सेंस में जिस व्यक्ति से थोड़ा सा वो द्वेष की भावना हो और इस प्रकार का उससे कोऑपरेशन करे, इट मे बिकम ईजियर इन द सेंस दे नो अल्टीमेटली कि वो उनको डिसीव ही डिसीव करने वाले हैं। पर जहां पे बिल्कुल सेल्फलेस होकर कोऑपरेशन करना हो और ऐसे बिल्कुल डिफरेंट फीलिंग्स हो, तो फिर कैसे और मुश्किल हो जाता है।
ठीक है, हम यह नहीं कह रहे कि वो मुश्किल नहीं है, मुश्किल तो जरूर है, लेकिन यहां पर भी देवताओं को ऐसा नहीं कि वो आसान है। हालांकि एक अल्टीरियर मोटिव है, लेकिन फिर भी शत्रुओं के साथ साथ में मिलकर कार्य करना इतना आसान नहीं है, इतना बड़ा कार्य है। ऐसा नहीं कि केवल कुछ समय के लिए, लेकिन फिर भी वो कर पाए क्योंकि लक्ष्य उनका क्लियर था और क्योंकि यहां पर भगवान उनको आदेश दे रहे हैं। तो इसलिए अगर लक्ष्य क्लियर है, तपस्या जरूर है, लेकिन फिर भी अगर हम सोचते हैं कि मेरा लक्ष्य है प्रभुपाद जी को प्रसन्न करना, भक्तों को प्रसन्न करना, गुरु को प्रसन्न करना, ये मेरा लक्ष्य है, तो अगर वो लक्ष्य क्लियर है तो फिर हम पूरे से प्रयास करेंगे उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए. डिफिकल्टीज विल बी देयर, आई एम नॉट सेइंग देयर वोंट बी डिफिकल्टीज, लेकिन फिर भी हम पूरी तरह से प्रयास करेंगे. और अगर हम प्रयास करेंगे फिर भगवान मदद करेंगे. तो इसलिए हम वो उदाहरण देते हैं ना, वो चिड़िया का जिन्होंने समुद्र को सुखाने का प्रयास किया, तो वो तो इंपॉसिबल था, वो तो असंभव था उसका. तो उसी प्रकार हम कह सकते हैं कि क्योंकि इस प्रकार सहयोग करना ये ऑलमोस्ट असंभव है, ऐसे लगता है, लेकिन फिर भी अगर हम कम से कम प्रयास करेंगे प्रामाणिकता के साथ, सिंसियरिटी के साथ, फिर भगवान मदद कर सकते. लेकिन मुख्य बात यह है कि लक्ष्य क्लियर होना चाहिए.
थैंक यू गुरु, बहुत सुंदर तरीके से आपने समझाया. आपने ऐसे डोंट्स बताए कि क्या क्या चीज़ें ऑब्स्टिकल्स आती हैं कोऑपरेशन में जिनसे हमें बचना चाहिए, और पैरेलली हम क्या क्या डूज कर सकते हैं, क्या क्या क्वालिटीज डेवलप कर सकते हैं जिनसे हम डिवोटीज ज़्यादा अच्छे से कोऑपरेट कर सकें, क्या क्वालिटीज हमें हेल्प करेगी जिससे हम कैन हैव बेटर कोऑपरेशन अमंग डिवोटीज एंड बेटर रिलेशनशिप, बेटर बॉन्डिंग टू अचीव दैट गोल.
तो यहां पर जो पॉजिटिव क्वालिटीज हैं, वो जरूरत है कोऑपरेशन के लिए, वो है कि हम निस्वार्थ भावना से गुरु और वैष्णव को प्रसन्न करने के लिए प्रयास. तो जब हम जैसे कि यहां पर शत्रुओं के साथ कोऑपरेट करने के लिए जो मिथ्या अहंकार है, जो फॉल्स ईगो है, उसको बाजू में रखना पड़ता है. तो इसका मतलब यह है कि हमें सहनशीलता, नम्रता, इन क्वालिटीज को विकसित करना जरूरी. क्योंकि जब हम सहन करने के लिए तैयार होते हैं तो हालांकि मुझे अच्छा नहीं लगता है इस भक्त के साथ या इन भक्तों के साथ कार्य करना, मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी भगवान की संतुष्टि के लिए सहन करना, तो सहनशीलता जरूरी है. भगवान बताते हैं मात्र स्पर्शास्त कामते. तो दुख और सुख दोनों को सहन करना, भगवान कहते हैं शीतोष्ण सुख दुखदा. तो कभी कभी परिस्थितियां जो है वो अनुकूल होगी, कभी कभी हमारे मित्रों के साथ हमें सेवा करने को मिलता है तो तभी हम आनंदित होते हैं, लेकिन जब ऐसे लोगों के साथ काम करना है जिनसे मिलता जुलता नहीं है तो फिर हम दुखी हो जाते हैं. लेकिन भगवान कहते हैं कि ठीक है, दोनों परिस्थितियों को सहन करना है, इक्विलिब्रियम इन बोथ हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस. तो इसका मतलब यह है कि जब हम परिस्थिति अनुकूल है तो इसका मतलब यह नहीं कि हम बहुत आनंदित हो जाते हैं, उस समय भी हमें समझना चाहिए कि ये भगवान की कृपा है. और जब हम प्रतिकूल परिस्थिति में भगवान डालते हैं तभी भी समझना है कि भगवान की कृपा है, ये हमारे लिए टेस्ट है, परीक्षा है. उस दृष्टिकोण से अगर हम समझेंगे तो फिर हम प्रयास करेंगे. तो मुख्य क्वालिटीज यह है नम्रता और सहिष्णुता, ह्यूमिलिटी एंड टॉलरेंस. तो इसलिए यथानादपी सुनिश्चित श्लोक पर इतना जोर दिया जाता है, एम्फेसिस दिया जाता है, क्योंकि यही क्वालिटीज के साथ हम भक्ति में प्रगति कर सकते हैं, ना तो मुश्किल.
थैंक यू प्रभु जी. आपने बोला कि हमारे मतभेद अलग अलग हो सकते हैं लेकिन अगर हमारा लक्ष्य एक हो तो हम कॉपरेट करते हैं. इन भक्ति की प्रारंभिक अवस्था में हम देखते हैं सब भक्तों के मतभेद भी, लक्ष्य भी अलग अलग होते हैं, तो ऐसी स्थिति में कॉपरेट करना बड़ा कठिन सा होता है. कि लक्ष्य अगर उसके मिशन के अनुकूल नहीं है तो कैसे उनसे कॉपरेट होगा।
तो अगर तो मेरा प्रश्न यह है कि लक्ष्य क्यों अलग है?
क्योंकि भक्ति में परिपक्वता नहीं है, कमिटमेंट कम है अपने इनके द्वारा।
ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि उनको या तो पता नहीं है कि लक्ष्य क्या है, या पता होने पर भी उस लक्ष्य को केंद्र में नहीं रख सकते हैं। तो दोनों चीजों के लिए इसलिए ट्रेनिंग और एडुकेशन की आवश्यकता है। तो अगर हम कहते हैं कि लक्ष्य पता नहीं है, तो इसलिए रोज श्रीमद् भागवतम क्लास में बार बार वही चीज बताया जाता है कि भक्ति का लक्ष्य क्या है। भक्ति का लक्ष्य धनम जनम सुंदरी नहीं है, भगवान को प्रसन्न करना यह एकमात्र लक्ष्य है, इसको यह बार बार बताया जाता है। और अगर व्यक्ति प्रामाणिक है तो फिर धीरे धीरे उस लक्ष्य को सामने रखते हुए वो कार्य करने का प्रयास करेगा। ऑफ कोर्स अगर प्रयास करना है लेकिन फिर भी जैसे कि हमने बताया स्टेज घन तरल, तो कभी वो सफल हो जाता है, कभी सफल नहीं हो पाता है। लेकिन फिर भी अगर ठीक है, आज मैं सफल नहीं हुआ, कल मैंने फिर से सुन लिया कि मेरा लक्ष्य क्या होना चाहिए, ये फिर से एक रिमाइंडर हो जाता है, तो फिर से मैं ट्रैक में आ जाता हूं। तो हम देखते हैं कि हमारा पूरा भक्तिमय जीवन, या भक्तिमय जीवन ही छोड़ो, सामान्यतः भौतिक जीवन में भी हम देखते हैं कि व्यक्ति हर एक कार्य जो करता है वो एक बैलेंस रखने के लिए है, वो ट्रैक पर रखने के लिए है। जब ड्राइवर कार चलाता है तो वो क्या करता है, कार को रोड पर रखने के लिए, ट्रैक पर रखने के लिए बार बार वो प्रयास कर रहा है। उसी प्रकार जो पायलट है, जो विमान चलाता है, वो क्या करता है, बार बार वही करता है। तो क्योंकि ये संभावना है ऑफ ट्रैक जाना, तो लेकिन बार बार वो ड्राइवर वही करना है, उसको ट्रैक पर लाना। तो उसी प्रकार भक्ति में जो है वो बार बार वही हो जाता है। आज हम सुन लेते हैं फिर भूल जाते हैं, फिर सुन लेते हैं फिर भूल जाते हैं। तो इसलिए ये क्या है, ये अनिश्चित भजन क्रिया है। जब तक व्यक्ति निष्ठा के स्तर पर नहीं आ जाता है तब तक वो स्टेडीनेस नहीं होता है, स्थिरता नहीं होती। जिस प्रकार एक बच्चा जो है जब वो साइकिल सीखता है, या छोटा बच्चा चलने को सीखता है, तो क्या होता है, बार बार गिरता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो जो प्रयास ही छोड़ देता है, ऐसा नहीं है, बार बार गिरता है लेकिन फिर से प्रयास करता है। तो उसी प्रकार ये स्वाभाविक है कि बद्धता के कारण हम कभी सफल होंगे, कभी सफल नहीं। लेकिन फिर तो इसलिए ईश्वरन पर इतना जोर दिया गया है वेदी साधना भक्ति में। तो जब हम बार बार इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये स्वाभाविक है कि हम भूल जाते हैं, फिर से याद दिलाना, फिर से याद दिलाना, फिर से याद दिलाना, तो जैसे वो धीरे धीरे वो उस लक्ष्य को सामने रखते हुए प्रयास करता रहता है, तो फिर धीरे धीरे स्थिरता के स्तर पर, निष्ठा के स्तर पर धीरे धीरे आ जाता है अनंत निर्वृत्ति वाले से। व्हाट शुड वी टेक मोर क्वेश्चन? इट्स 9:15।
धन्यवाद। स्टार्टिंग में जैसे आपने बताया सेम टॉपिक में, जो ये कॉन्टेक्स्ट है, इससे ऐसा लग रहा है कि जो बिल्कुल क्लियर है कि देवता है और असुर है, इट्स लाइक डेमिगॉड्स डीमंस। कैन वी आल्सो से दैट इट्स लाइक डिवोट इज वन सेंट एंड नॉट डिवोट इज वन सेंट?
ओके,
मैं पूछ रहा हूँ, इट्स लाइक अगर ऐसा है तो व्हाट सॉर्ट ऑफ कोऑपरेशन कैन पॉसिबली हैपन, मतलब क्या हम देख सकते हैं कितने हद तक कितना कोऑपरेशन, क्या किस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए पहला। और दूसरा इसके साथ ही है कि जैसे आपने बताया कि मतभेद होंगे क्योंकि व्यक्तित्व अलग अलग हैं, लक्ष्य एक है, तो लक्ष्य के हेतु कोऑपरेशन हो सकता है। इसका मतलब क्या मतभेद अपने जगह पर रहेंगे मगर वो आपके लक्ष्य को हासिल करने में बाधा नहीं बनेंगे, क्या ऐसा है?
ओके गुड। तो जो नॉन डिवोटीज के साथ कोऑपरेशन के बारे में शायद आपने कम्युनिकेशन से ना सीखा है, कम्युनिकेशन सेमिनार। तो जिन्होंने कम्युनिकेशन सेमिनार अटेंड किया है, कितने बच्चों ने अटेंड किया है यहाँ पर कम्युनिकेशन सेमिनार अनुत्तम प्रो द्वारा? तो सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है वहां पर? नीड्स इंटरेस्ट कंसर्न्स। तो उस पूरा सेमिनार का वही केंद्र है कि जब हम अभक्तों के साथ भी डील करते हैं, क्योंकि हम ये समाज में हैं, तो उनके नीड्स इंटरेस्ट कंसर्न्स को ध्यान में रखना ये जरूरी है, तो फिर वो कोऑपरेशन हो पाता है। जैसे कि यहां पर आप तो जोर शोर से मंगलाती अब करते हैं यहां पर, तो अगर लेकिन अगर ये बाजू के लोग ये कंप्लेंट करेंगे तो किसी भी समाज में सहयोग की आवश्यकता है, तो वो पूरा सेमिनार में वही सिखाया जाता है कि किस प्रकार गवर्नमेंट लोगों के साथ, नेबर्स के साथ, और उसमें एक ऑडियंस कौन है? डिवोटीज भी है। तो वही बात है। तो कोऑपरेशन का मतलब यह है कि मैं केवल मेरे नीड्स इंटरेस्ट के बारे में नहीं सोचता हूं, बल्कि उनके नीड्स इंटरेस्ट कंसर्न्स, तभी कोऑपरेशन हो पाता है। तो जब व्यक्ति केवल काम क्रोध और लोभ से प्रभावित होता है, तो फिर वो केवल अपने नीड्स इंटरेस्ट कंसर्न्स के बारे में सोचता है, मुझे क्या प्राप्त होगा। लेकिन कोऑपरेशन का यह मतलब है कि दूसरे व्यक्ति का क्या नीड्स इंटरेस्ट कंसर्न्स है वो सोचना, तभी कोऑपरेशन हो पाता है। दैट्स द एसेंस। That means we have to come out of the selfish zone and become selfless. It's a big challenge, but that's what's required. What's the
second? Sir, because difference of opinion है, पर क्योंकि goal एक है तो हम cooperate कर लेते हैं because goal एक है। तो क्या difference of opinion रहना जो है, I mean, इसका effect करता है नहीं करता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो अभी भी आप cooperate करके कैन बी सक्सेसफुल?
हाँ, तो मतभेद हो सकता है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी जो एक सुपीरियर गोल को सामने रखते हुए या जो वरिष्ठ वैष्णव है, जो गुरु है, उनके आदेश के अनुसार कार्य करना हालांकि मुझे पसंद नहीं है। जिस प्रकार प्रीतु महाराज जो है, तो प्रीतु महाराज बोल सकते थे ब्रह्मा जी को, देखो गड़बड़ करने वाले तो इंद्र है, उनको बताओ। लेकिन क्योंकि ब्रह्मा जी भगवान के प्रतिनिधि, ब्रह्मा जी बोल रहे, तो चुपचाप प्रीतु महाराज बंद कर देते हैं। उसी प्रकार प्रियवत महाराज भी, तो जब सुपीरियर वैष्णव या गुरु वो बताते हैं, तो फिर उनकी प्रसन्नता के लिए हम कार्य करते हैं। मतभेद हो सकता है तो, लेकिन फिर ये तपस्या बन जाता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है लेकिन फिर भी वो कार्य करना उनकी प्रसन्नता के लिए। तो यही भगवदगीता का यही उद्देश्य है। अर्जुन लड़ना नहीं चाहता था, भगवान के नहीं लड़ो, मैं चाहता हूं, तो ठीक है, इट्स तपस्या, बट इट्स टू बी डन फॉर अ हायर कॉज। सो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन में भी देयर, बट आई कीप देम असाइड फॉर अ हायर कॉज, एंड दैट्स द तपस्या। लेकिन जब हम उस तपस्या को स्वीकार करते हैं, जैसे प्रीतु महाराज ने किया, तो फिर क्या परिणाम क्या हुआ? भगवान प्रकट हुए, वो परिणाम। तो उसी प्रकार अगर हम इस तपस्या को उठाएंगे और सहयोग करेंगे, हालांकि मुझे पसंद नहीं है, तो फिर उसका परिणाम क्या होगा? गुरु प्रसन्न होंगे, भगवान प्रसन्न होंगे, और अंततः खुद के जीवन में भी और सामाजिक दृष्टि से या पूरे इस्कॉन संस्था में हम सब लोग आध्यात्मिक प्रगति कर पाएंगे। नहीं तो अगर हम अपने मिथ्या अहंकार को लेकर हम सहयोग नहीं करेंगे, तो फिर हम खुद भी प्रगति नहीं कर पाएंगे, और फिर यह समाज भी, यह पूरा इस्कॉन सोसाइटी भी, यह भी अच्छे से आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो इसलिए मुख्य बात यह है कि यहाँ पर जिस प्रकार भगवान सिखा रहे हैं काम क्रोध लोभ ये सब अनर्थों को बाजू में रखते हुए सहयोग करो भगवान की प्रसन्नता के लिए, तभी हम भक्ति में अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम।